सूरज में अंदर गया
सूरज को
उनका भाई का शादी है।
अच्छा आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 18वां अध्याय। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्लोक संख्या 16। दैतेयाः
दानवाः
वत्सं
प्रह्लादं
असुरा
ऋषभं
विधाय अदुदुहन्
क्षीरं
अयः
पात्रे
सुरा
आसवं।
दैतेयादानवावत्सं
प्रह्लादं असुरर्षभं
विधाय दूदुहन् क्षीरम्
अयः पात्रे सुरासवम्
दैतेयादानवावत्सं प्रह्लादं असुरर्षभम्।
विधाय दूदुहन् क्षीरम्
अयः पात्रे सुरासवम्
दैतेयादानवावत्सं
प्रह्लादं असुरर्षभम्।
विधाय दूदुहन् क्षीरम्
अयः पात्रे सुरासवम्
दैतेयादानवावत्सं
प्रह्लादं असुरर्षभम्
विधाय दूदुहन् क्षीरम्
अयः पात्रे सुरासवम्
दैतेयादानवावत्सं
प्रह्लादं असुरर्षभम्
विधाय दूदुहन् क्षीरम्
अयः पात्रे सुरासवम् दैतेयाः
दिति के पुत्र
दानवाः
असुरों में
वत्सं
बछड़ा
प्रह्लाद महाराज को
असुर
दानव
ऋषभं
प्रधान
विधाय
बनाकर
अदुदुहन्
दुह लिया
क्षीरम्
दूध
अयः
लोह पात्र में
सुरा
शराब
आसवम्
खमीर से बनाया गया द्रव यथा यवसुरा। यवसुरा का क्या मतलब है? पेय
बियर
जो शराब जैसा है क्या?
फर्मेंटेड लिक्विड्स लाइक बियर
फर्मेंटेड शराब जैसा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। दिति के पुत्रों तथा असुरों ने असुर कुल में उत्पन्न प्रह्लाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर उसे लोह के पात्र में रख दिया। तात्पर्य असुरों के अपने पेय हैं। जो सुरा तथा यवसुरा के रूप में होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे देवता सोमरस का पान करते हैं। दिति से उत्पन्न असुरजन सुरा तथा यवसुरा पीकर प्रसन्न रहते हैं। आज के समय में भी आसुरी वृत्ति वाले लोग सुरा तथा यवसुरा ही पीने के आदि होते हैं। इस प्रसंग में प्रहलाद महाराज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप में असुरों के कुल में उत्पन्न हुए थे। अतः उनकी कृपा से असुरगण तब से आज तक सुरा तथा यवसुरा पीते आ रहे हैं। अयह लोहा शब्द भी महत्व का है। जहाँ अमृतमय सोम को स्वर्ण पात्रों में रखा जाता है, वहीं सुरा तथा यवसुरा लोह पात्र में रखी जाती है। सोमरस श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ण पात्र में रखा जाता है और सुरा तथा यवसुरा निकृष्ट होने से लोह पात्र में। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकृतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन किस प्रकार से हुआ। जैसे हम पिछले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी को वसुंधरा या वसुधा इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान हैं। और किस प्रकार से हैं इसका एक उदाहरण यहाँ से हमें समझ पड़ रहा है। जितने भी आवश्यकताएं पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों के लिए हैं, उन सब को पूर्ण संतुष्ट करने की क्षमता पृथ्वी माता रखती है। इसलिए पृथ्वी न केवल माता है, वो हमारे सब कुछ देती है। कल ही मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान होते हैं हम उनको क्यों मानते हैं, क्यों सम्मान देते हैं। सम्मान देने का कारण ये है कि उन्हीं के कारण हमको सब कुछ मिल रहा है। हवा है, पानी है, ये है, जितने भी चीजें, हमारा प्राण है, शरीर है, सब कुछ भगवान द्वारा प्रदत्त है। इसलिए हम उनको इतना मानते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, सब कुछ उन्हीं से आता है। ये कृतज्ञता है। जो व्यक्ति भले नास्तिक भी हो, उसको तो समझना चाहिए ना कि ये सारे वस्तुएं मुझे मुफ्त में मिल रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। प्रकृति तो अपने आप दे रही है, प्रकृति के पीछे भी कुछ होना चाहिए। तो इसलिए हम भगवान को मानते थे। ठीक उसी प्रकार से अन्य जितने भी लोग ये संसार में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं, वो भी हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए जो राजा होता है देश का, उसको नार देव बोलते हैं। जो देव या भगवान है नर रूप में, और भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए वो प्रजा का भरण पोषण करता है, पालन करता है, सुरक्षा करता है। तो जो काम भगवान करते हैं वास्तव में, ये राजा जो है भगवान का निमित्त बन के उसी कार्य को करते हैं, क्योंकि वो भगवान के कार्यों में सहायता देते हैं। भगवान के प्रतिनिधि बन के हमारे जो जितने भी आवश्यक वस्तु हैं वो प्रदान करते हैं। इसलिए राजा को भी भगवान तुल्य मानना चाहिए और वैसे ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राजा के कारण हमें सब कुछ मिलता है। वैसे वैदिक राजनीति शास्त्र के अनुसार सारी जमीन तो भगवान की है। ऐसे हिंदी में भी कहावत है ना, गोपाल के बगैर
सब
क्या।
धरती गोपाल की, सब भूमि गोपाल की,
हाँ,
सब भूमि गोपाल की।
सब भूमि गोपाल के लिए खास करके, ठीक ऐसे ही है, सब धरती गोपाल की, सब भूमि गोपाल की। हाँ, तो वास्तव में सत्य है। लोग ऐसे मजाक में बोलते हैं इसको, लेकिन वास्तव में ये बहुत सत्य है। सारे पृथ्वी सब कुछ ही भगवान की संपत्ति है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो सर्वलोकों के वो महेश्वर हैं। तो फिर भी शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि भगवान तो इधर उपस्थित है नहीं ना हमारे बीच में, तो भगवान की ओर से राजा हैं जो सारे जमीन के मालिक होते हैं। और फिर राजा अन्यों को जमीन देते हैं, तुम इसमें खेती, इतना इतना जमीन ले लो, तुम खेती करो, तुम इसमें ये कर लो। तो ये राजतंत्र है जो वैदिक शास्त्रों के आधार पर है। फिर आया साम्यवाद तंत्र। साम्यवाद में लोग क्या कहते हैं कि भगवान के नहीं, सब ये जमीन हम सब की है, हम सब के मिलके प्रजा की जमीन है, किसी का व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकार नहीं, कोई संपत्ति व्यक्तिगत किसी के नहीं है। परंतु प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजातंत्र में काफी जमीन व्यक्तियों की होती है, उनकी निजी संपत्ति होती है, और जो बचा हुआ है वो सरकार का होता है। जैसे आज भी ऐसे नियम है कि जब हम कोई जमीन खरीदते हैं तो ये जमीन कहाँ तक हमारी है। जैसे समझ लो हमने 1 एकड़ जमीन खरीद लिया, तो ये 1 एकड़ जमीन की चौड़ाई लंबाई हमको समझ में आ गया कि ये जमीन ये हमारी है, लेकिन कितने गहराई में जमीन हमारी है, आप समझ रहे हैं बात,
बिल्कुल
कितने गहराई तक ये जमीन हमारा हमारी संपत्ति बनती है जब हम जमीन खरीदते हैं किसी से। जैसे अभी हमारे मंदिर की ये जमीन है, हमने खरीदा हुआ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कितने गहराई तक ये हमारी संपत्ति है, इसके लिए भी कोई कानून है। अभी वो कानून मुझे ठीक पता नहीं, किसी वकील से पूछना पड़ेगा। हाँ,
फॉरेस्ट का जो हम खोद रहे हैं हमारा 3 फुट का नीचे फॉरेस्ट को परमिशन
3 फुट के नीचे हमको यदि खोदना है, लेकिन हम फिर ताला वाला नहीं कर सकते।
है, ये हम वाइट ये जो भी अंदर ये जमीन में हम पत्थर निकाल रहे थे तब वो
हमारे
आके,
जमीन में
हाँ तब वो आके हमको बोल रहे थे 3 फुट का नीचे आप कुछ भी निकालने तो भी हमको परमिशन पूछना चाहिए। आप कर सकते हैं आपका ही, मगर हमारा परमिशन के बिना
नहीं। तो तालाब कैसे, टैंक वैंक हमने तलब किया इतना
बड़ा, उनको बोल बोल के हम लोग का परमिशन।
तो खैर जो भी कानून हो, अभी कानून में क्या होता है कि इतना ज़मीन फिर उसके नीचे सरकार का हो जाता है। तो इस संदर्भ में वो महाभारत की कहानी याद आ रही है, आपने सुना होगा कि एक बार क्या हुआ कि दो किसान थे, तो एक किसान ने दूसरे किसान से ज़मीन खरीद ली, ठीक है। तो जिसने ज़मीन खरीदी उसने खेती करना शुरू कर दिया। तो खेती करते करते, हल चलाते चलाते क्या हो गया कि कोई ठोकर लग गया ज़मीन के अंदर हल का, तो वहाँ रोक के उसने थोड़ी खुदाई की। तो खुदाई करने पर क्या निकला, खजाना निकला, खजाने की पेटी निकली वहाँ से। तो वो खजाने की पेटी ज़मीन के अंदर से निकाल ली उसने खुदाई खोदने के बाद। तो फिर उसने वो खजाने की पेटी जाके जिसने बेचा था ना उसको जाके दिया। उसने बोला कि देखो ये ज़मीन के अंदर मुझे खजाना मिला, तो ये आपकी होगी शायद, तो आप ले लो वापस। तो जिसने ज़मीन बेचा था उसने बोला नहीं मेरी नहीं है, और वैसे भी मैंने ज़मीन आपको बेचा ना, तो इसलिए आपका हो गया। तो खरीदने वाले ने बोला आपने ज़मीन मेरे को बेचा लेकिन ज़मीन के अंदर खजाना मेरे को नहीं बेचा, इसलिए खजाना आपका ही है। आज ऐसे हो सकता है? उल्टा उल्टा है ना, आजकल उल्टा हो जाता है। दूसरे के जमीन में है तो हम बोले नहीं वो हमारा है, है ना। तो ये लोग आए महाराज युधिष्ठिर के पास, आपस में झगड़ने लगे। देखो कैसा विचित्र झगड़ा, हाँ कि ये ज़मीन, ये खजाना जो मेरे को मिला ये इनका है, वो तो नहीं, मेरा नहीं है, वो उन्हीं का है, ऐसे बोल के झगड़ा हुआ उनका। और झगड़ा इतना गंभीर हो गया राजा तक पहुंच गई बात, युधिष्ठिर महाराज थे। तो वास्तव में भीम के पास पहुंच, तो भीम को पता नहीं चलिए क्या गड़बड़ा है, क्या करेंगे इसको। तो वो युधिष्ठिर महाराज के पास ले गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो सबसे बुद्धिमान है ना, तो शास्त्रों को भी जानते हैं अच्छी तरह से, सब जानते हैं। तो उनको पूछा ये युधिष्ठिर महाराज, सोचा क्या है इसके क्या उपाय निकालेंगे। तो उन्होंने उपाय निकाला, आप दोनों ही तय करो कि हम नहीं बोल सकते अभी, तो उनके ऊपर ही डाल दिया उन्होंने, आप ही तय करो। तो थोड़े दिन के बाद फिर से ये भीमसेन के पास आए, लेकिन इस बार झगड़ा बिल्कुल उल्टा हो गया। खरीदने वाला बोलने लगा ये खजाना मेरा है, मैं उसको क्यों दूंगा। बेचने वाला बोला नहीं नहीं मैंने उसको ज़मीन ही बेचा था, खजाना नहीं बेचा था, ये खजाना मेरा है। अब भीम से बोले ये कहा है एन रे, क्या हो रहा है पहले आए थे तुम्हारा झगड़ा उल्टा था, आज ऐसा उल्टा होके आ गए मेरे पास। तब भीमसेन ने बोला ये मेरे बस की बात नहीं, अभी हम युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के पास गए, युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर भीमसेन को बोला कि ये लक्षण है, किस चीज़ का लक्षण है कि कलयुग प्रारंभ होने वाला है, जब ऐसे झगड़े शुरू होंगे ना, यह कलयुग का लक्षण अभी झलक दिखाई दे रही है, अभी जो आभास है कलयुग का, जैसे सूर्योदय के पहले रोशनी आती है ना, फिर बाद में सूर्योदय, अरुणोदय बोलते हैं उसको, अरुणोदय फिर सूर्योदय। तो वो ऐसा ये जो अभी समय है कलयुग आने वाला है, इससे हम लक्षण जान सकते हैं। फिर मुझे अभी याद नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज ने अंततः तो निर्णय क्या लिया, शायद बोला कि ये सरकार की है। लेकिन आजकल यदि ऐसे होता तो सरकार जरूर बोलती कि आप दोनों का न्याय ये हमारा है। इसके बारे में कानून भी है कि जमीन में पाए गए जो खजाना होता है उसके बारे में एक विशेष कानून है, किताब है कानून का, कि जो भी कानून नीचे पृथ्वी में मिलता है हमको तो वो सरकार का होना चाहिए, हमारा नहीं। लोग चुप चुप के रखते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा उनका नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं वृंदावन में था तो एक आदमी मुझे मिलने आया कि उसने बोला, उसने एक हमको ईंट दिया, तो बोला ये सोने का ईंट है और प्राचीन काल का ईंट है। हमारे ज़मीन में जब हम खुदाई कर रहे थे तो हमको ये ईंट मिला, तो वो रहता था पलवल के पास में, तो पलवल बोल के एक जगह है जो ब्रज के सीमा पर है, वो दिल्ली जाते हुए रास्ता में, तो पलवल के उस पार का कोई गांव था। तो हमने बोला भाई हम ही मिले क्या हमारे पास क्यों आए, इतने दूर वृंदावन में क्यों आए हमारे पास हा? तो मुझे देखने से पता नहीं चला कि असली सोना है कि नकली सोना है, कि हम तो सोना रहे नहीं और ना ही हम सोनार गौर हरी है तो हमको कैसे पता चला तो हमको कैसा पता चलेगा ये असली है नकली है कि नहीं। तो हमने भक्त को बुलाया, भाई देखो ये क्या बोल रहे हैं। तो उसने बोला कि उसको ये घर बांधते से हम खुदाई करना पड़ता है ना, तो कुछ तो उसमें उसको ये मिल गया, पुराने ऐसे थोड़े मिल गए, और यदि वो ये असली सोना होता तो सोने का ईंट इसका तो लाखों लाखों रुपए में कीमत हो जाता। और बोल रहा था मैं आपको केवल ये 2 लाख रुपये में दूंगा, इसका कीमत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं यदि किसी सोनार की दुकान में बेचने जाऊँ तो फिर वो खरीदेगा नहीं, पुलिस होगा, ये होगा, वो सब हो जाएगा, इसलिए आपको बेच रहा हूँ, आप मंदिर हैं आप खरीद लो। तो वैसे भी हम तो खरीद नहीं सकते, मुझे इतना तो मालूम था कि क्योंकि हमने ये पढ़ा भी था और ये आधुनिक काल का कानून क्या आपको मालूम, तो ये गैर कानूनी, हम ऐसा नहीं कर सकते, मंदिर से हम ऐसा नहीं खरीद सकते ये सब हाँ। तो आखिर में हमने खरीदा नहीं, लेकिन बाद में पता क्यों हमने रखा इसको, बोला कि हम रखेंगे इसको सुनार को दिखाएंगे, जो भक्त हमारे पास साथ में बैठे थे बोले हम दिखाएंगे। अंततः निकला ये कि ये नकली था ये सब उनका कुछ लोगों को ठगने की वो उनकी बात थी। ऐसे बहुत लोग होते हैं उधर, सब जगह दुनिया में होते हैं ना, ठगने के लिए क्या क्या सब करते हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कोई खजाना हमको मिले पृथ्वी के अंदर तो ये सब सरकार की संपत्ति मानी जाती है, हमारा अधिकार नहीं है, भले हमारे जमीन में मिले वो खजाना। तो इस तरह से जो प्रजातंत्र में नियम होता है कि सीमित रूप से व्यक्तियों की संपत्ति हो सकती है, जमीन हो, घर हो, सोना, पैसा, ये सब हो सकती है, लेकिन बाकी सब सरकार की होती है इस तरह से। तो ये अंतर है राजतंत्र में, साम्यवाद में और प्रजातंत्र में। परंतु वैदिक साहित्य शास्त्रों के अनुसार सब कुछ भगवान का है, परंतु भगवान की ओर से राजा की जमीन मानी जाती है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए राजा को भी इतना सम्मान दिया जाता है क्योंकि राजा ही सब कुछ देता है। तो प्रभुपाद के प्रवचन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे ना, कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि भगवान को हम इसलिए इतना सम्मान देते हैं, मानते हैं, ये एक स्तर की बात है ना, ऊपर की स्तर की बात है प्रेम वो सब बाद में, लेकिन साधारण एक जो सभ्यता के अनुसार जिसने हमें सब कुछ दिया है उसके प्रति कोई कृतज्ञता, कोई आभार हमारे मन में होना चाहिए कि नहीं। तो क्योंकि राजा के कारण हमको सब कुछ मिलता है, तो राजा को हम इतना सम्मान देते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु का सम्मान देते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि क्यों हम लोगों को सम्मान देते हैं, राजा है गुरु है इनको हम क्यों सम्मान देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमको इतना प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी माता भी, ये प्रवचन में नहीं था प्रभुपाद जी का, ये अभी हम बता रहे हैं बात को आगे बढ़ा के, कि पृथ्वी माता से भी हमको इतना कुछ मिलता है, सब कुछ जो भी हमें चाहिए वो सब मिलता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थना में तात्पर्य में एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य समाज की समृद्धि पृथ्वी के उपहारों पर निर्भर है, न कि बड़े बड़े कृत्रिम रूपी कृत्रिम कारखानों पर। बड़े बड़े कारखाने जो करेंगे उस पर नहीं। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन में बोल रहे थे कि देखो हम मथुरा से जाते हैं वृंदावन, तो पहले खेत वेत हुआ करते थे, आजकल हम क्या देखते हैं, यह टायर की फैक्ट्री है, रबर उस समय हुई होगी, अभी पता नहीं है कि नहीं, वो गाड़ी का और ट्रक का टायर होता है ना रबर का, उसका फैक्ट कारखाना उधर कहीं हुआ होगा उस समय। तो प्रभुपाद जी बोलते ऐसे यहाँ खेती वेती छोड़ के ये सब केवल कारखाने बना रहे हैं। तो खैर बात यह है कि पृथ्वी माता हमको सब कुछ देती है, जितनी भी हमारी आवश्यकता है उनको प्रदान करने के लिए पृथ्वी माता समर्थ है, यदि हम ठीक से रहे तो। यदि हम ठीक से नहीं रहे हैं, जैसे कई हफ्ते पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो पृथ्वी माता हमको खींच लेती है। तो क्योंकि पृथ्वी माता हमको सब कुछ देती हैं, इसलिए वो हम उनको मानते हैं, इसलिए माता पिता को भी सम्मान देना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी उस प्रवचन में बोल रहे थे। जैसे माता पिता को भी इसी तरह का सम्मान मिलता है, क्योंकि उनके द्वारा हमको सब कुछ मिला है, शरीर मिला है, बचपन में हमारा भरण पोषण पालन किया है उन्होंने। तो और इसके अतिरिक्त पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है, हर रोज प्रातः काल में जब हम उठते हैं और रात को जब भी सोते हैं तो हमें थोड़ी प्रार्थना बोलनी चाहिए, अपने बिस्तर में जहाँ भी हम चटाई में जहाँ भी हम सो रहे हैं तो भगवान का नाम लेना चाहिए, कोई मंत्रों का श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करते हुए हमें जगना चाहिए या सोना चाहिए। तो खास करके सुबह उठते समय एक प्रार्थना वैदिक सभ्यता में बोली जाती थी, आपको याद होगा कभी चर्चा हमने की है, याद है किसी को?
समुद्र समुद्र
पाद स्पर्श क्षमस्तमाम, फिर हम क्या मतलब है इसका?
समुद्र वसने देवी मतलब जिनका वस्त्र समुद्र है, पर्वत स्थान मणि जिनके स्थान पर्वत है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु की पत्नी जो पृथ्वी है उनको नमस्कार करते हैं, पाद स्पर्श क्षमस्तमाम मतलब अपना पाँव को रखने वाला क्षमा कर दीजिए।
क्योंकि हम जब उठते हैं पृथ्वी के ऊपर पाँव रखते हैं ना, तो पृथ्वी के ऊपर पाँव रखने के बजाय तो कुछ कर नहीं सकते हम, सर पे तो चल नहीं सकते है कि नहीं। तो वास्तव में रामानुजाचार्य जब तिरुमला गए थे ना, तिरुमला जानते हैं ना, तिरुमला और तिरुपति में क्या फर्क है?
तिरुपति पूरा स्थान है, तिरुमला पर्वत है जहाँ पे मंदिर।
तिरुपति पूरा स्थान है और जो पर्वत है पर्वत के ऊपर जो स्थान है उसको तिरुमला बोलते हैं, जहाँ पे बालाजी का मंदिर है, तो ये है तिरुमला और सारा स्थान है तिरुपति। तिरु मतलब
श्री,
श्री लक्ष्मी, तिरुपति मतलब लक्ष्मी के पति अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण। तो रामानुजाचार्य जब तिरुमला गए थे पर्वत के ऊपर, तो ऐसे बताया जाता है कि ये पर्वत शेषनाग है, अनंत शेष, इसलिए शेषाद्री बोलते हैं ना उस सारे प्रांत को, 7 पर्वत हैं वहाँ पे, शेषाद्री बोलते हैं। तो रामानुजाचार्य अपने घुटनों पे गए थे उधर चल के ऊपर तक, बोले मैं पैर नहीं रख सकता शेष के ऊपर, ऐसे भी वो अपने घुटनों पे और ऐसे ऐसे करके ऊपर तक गए थे। आजकल हमें चढ़ के जाने में जान छूट जाती है पैरों पे, वो गाड़ी में बस में जाते हैं सब लोग। फिर रामू जी चरण सोचा पैर कैसे रखूँगा मैं, मुझे घुटनों पे चढ़ के जाना चाहिए। तो उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर भी पैर रखना है हमको, लेकिन ऐसे ऐसे तो हर समय नहीं चल सकते, तो क्या करें। इसलिए कम से कम पृथ्वी माता से क्षमा करना चाहिए। जब कोई चीज़ आवश्यक होती है हमारे लिए और हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो लेते हैं, परंतु क्षमा भी चाहते हैं। जैसे तुलसी महारानी के मंजरी और दल जब हम काटते हैं, हमें देखना चाहिए कि कम से कम दर्द तुलसी महारानी को हो, कष्ट नहीं देना चाहिए तुलसी महारानी को। इसलिए वो काटने का भी तरीका होता है, छट करके काटना चाहिए ताकि कम से कम वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और उस समय फिर हम क्षमा याचना भी करते हैं तुलसी महारानी की, हमें क्षमा कर दीजिए, आपको कष्ट पहुंचा है क्योंकि काट के आपको दर्द हुआ होगा। तो इस तरह से हम दूसरों को कुछ लेते हैं, उनको कोई कष्ट देते हैं, हमारे वजह से उनको होता है, तो हम क्षमा चाहते हैं, या उनको असम्मान करने के कारण हम करते हैं। ये प्रथा है, जब कोई यज्ञ संपन्न करते हैं, कोई अनुष्ठान संपन्न करते हैं, तो उसमें हमेशा क्षमा होती है कि हमारे हमसे जितने भी गलतियां हुई हैं, आप कोई भी पंडित से पूछो, कोई भी, चाहे विवाह हो, चाहे कोई अन्य कोई संस्कार हो, अंत में ये बोलते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, जो भी गलतियां हुई होगी उच्चारण में, मंत्रों में, कुछ हमारे व्यवहार में, तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी के ऊपर चलने जाते हैं तो हमें ये एक श्लोक बोलना चाहिए, सुबह उठते उठते ही भगवान को याद करना चाहिए, भगवान के बारे में उनका विग्रहों के नाम या कुछ उनके कोई श्लोक हो, ऐसे हमें बोलना चाहिए। और फिर ये पृथ्वी माता की क्षमा से हमें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, पूजनीय है, और हम उनके ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। तो इसलिए पृथ्वी माता को हम सम्मान देते हैं, सब कुछ उन्हीं से मिलता है। और जो हमारे वैज्ञानिक बहुत गर्व करते हैं कि हमने ये बनाया वो बनाया, लेकिन बनाया कहाँ से बनाया? ये सारे बनाने के लिए जितने भी आपके आविष्कार आदि हैं, ये जो भी आपने यंत्र बनाए, कुछ भी आपने बनाया, कहाँ से बनाया? ये पदार्थ आपको मिले पृथ्वी से ही ना, तो पृथ्वी माता ने ही आपको सब पदार्थ दिए हैं, और ये बनाने की जो शक्ति है वो भी भगवान ने दी है आपको, बनाने की जो बुद्धि है वो भी भगवान ने दी है। तो फिर गर्व किस बात का होना चाहिए? तो हम जान सकते हैं कि पृथ्वी माता समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के भंडार हैं, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? वसुंधरा या
वसुधा।
वसुधा। तो यहाँ पर अब पृथ्वी माता के कहने पर पृथ्वी महाराज और अन्य जितने भी ब्रह्मांड के निवासी हैं, वो आके पृथ्वी माता से तरह तरह के चीज़ों को, जो वांछनीय चीज़ें हैं, उनको ले रहे हैं। तो देवताओं ने सोमरस लिया, और फिर जो दैत्य और दानव हैं, दिति के पुत्र, उनको दैत्य बोलते हैं, वो असुर प्रवृत्ति के थे। कश्यप महाराज के दो पत्नियों में से अनेक पत्नियां थीं उनकी, दो पत्नियां थीं, वो बहनें थीं, दिति और अदिति। तो दिति से उत्पन्न हुए दैत्य, दैत्य अर्थात जो असुर प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि गलत समय पे उनका जन्म हुआ, जन्म में नहीं और बल्कि जो गर्भाधान हुआ वो गलत समय पे हुआ। और अदिति है, उनके पुत्रों को बोलते हैं
आदित्य,
आदित्य। कितने आदित्य हैं?
द्वादश
बारह द्वादश आदित्य वृंदावन में है ना, द्वादश आदित्य टीला जहाँ मदन मोहन मंदिर है, याद है ना सबको? आप में से कितने भक्त वृंदावन गए हैं? सब गए तो सनातन गोस्वामी के मदन मोहन मंदिर में गए होंगे। उसको बोलते हैं द्वादश आदित्य टीला। टीला मतलब थोड़ा पर्वत जैसे, छोटा पर्वत होता है उसको टीला बोलते हैं। ठीक है, तो द्वादश आदित्य ये बारह, जैसे सूर्य देव उसमें है, इंद्र सूर्य ये सब अदिति के पुत्र हैं, उनको आदित्य बोलते हैं, और जो दिति के पुत्र हैं उनको दैत्य बोलते हैं। हैं दोनों बहनें, लेकिन उन दोनों के पुत्रों में बहुत बड़ा अंतर है। एक बहन के बच्चे लड़के हैं असुर, असुरी वृत्ति के, और दूसरे बहन के बच्चे लड़के हैं सुर वृत्ति के। तो सुरों ने फिर सोमरस लिया, असुरों ने ये अलग अलग पात्रों में क्या लिया, उन्होंने सुरा तथा यवसुरा ये उन्होंने पदार्थ लिए निकाला। अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर लोहे के पात्र में रख दिया। तो एक बात तो ये है कि किस प्रकार का पेय हम पीते हैं, तो उससे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का स्तर क्या है। कोई शुद्ध पेय पीता है, दूध और फलों का रस इत्यादि, और दूसरे लोग कोई पीते हैं शराब, ऐसे मादक द्रव्यों को पीते हैं। तो इससे दोनों की चेतना में अंतर क्या है वो हम समझ सकते हैं। और जैसे वो पेय का गुण होता है, उसी प्रकार के पात्र में भी पीते हैं। इसलिए जो सोमरस था वो स्वर्ण पात्रों में उन्होंने लिया, और ये सुरा और ये आसव तरह तरह के यवसुरा ये जो मादक द्रव्य थे असुरों के, उन्होंने लोहे के पात्रों में लिया। आजकल सोने के पात्र कहाँ है? आजकल सभी लोहे के पात्र हम लोग भी इसमें लेते हैं, लोहे का पात्र ही है। स्टील, स्टील है ना, ये तो लोहे से ही बना होता है, लेकिन सोने के पात्र तो संभव नहीं है। तो भले हमारे पास सोने के पात्र न हो, परंतु पेय तो कम से कम श्रेष्ठ स्तर के पिए हम, उस तरह के नहीं। और सबसे अच्छा पेय कौन सा है? कृष्ण रसायनम। चरणामृत तो है ही। कृष्ण रसायनम पिब, कृष्ण का रसायन पीना चाहिए, ये पेय। श्लोक किसी को याद है? बहुत अच्छा, आदर इस पर खूब कृष्ण रसायन पीता है इसलिए। तो इसका अर्थ बताओ, इदम शरीरम, इदम मतलब ये, इदम शरीरम परिणाम पेशलम
बदलता ही है,
बदलते रहता है, और इसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है जल्दी, कुछ रहता नहीं इसमें, सौंदर्य खत्म हो जाता है। फिर पतति अवश्यम, क्या मतलब?
पतन होगा
अवश्य, पतन मतलब मृत्यु, विनाश। ये शरीर का सौंदर्य बहुत कम समय तक रहेगा, जल्दी निकल जाएगा। पतति अवश्यम, और साथ साथ इसका विनाश भी निश्चित है। पतत्य अवश्यम, फिर शत संधि जर्जरम, ये जो शरीर की संधियां हैं, संधियां जानते ना, ये एक संधि, ये संधि, ये संधि, ये संधि, ये भी संधि। जब बूढ़े लोगों में आप देखते हैं ना, संधिवात होता है, गड़बड़ ना, सब जड़ जकड़ पड़ते हैं, सब जड़ चरम। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे संधियां सब जकड़ जाती हैं। कितने सैकड़ों संधियां हैं हमारे शरीर के अंदर। कभी कभी कम आयु में भी होते हैं, कभी कभी अलग अलग कारणों से होते हैं। फिर
किम औषधिम पृच्छसि मूढद्रुमते,
किम औषधिम पृच्छसि, क्या मतलब
कि आप इस शरीर के लिए औषधि पूछते हो?
हे मूढ़ दुर्मते, हे मूढ़, हे दुर्मति, दुर्मति मतलब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसे क्यों बार बार औषध औषध दवाई 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 के पीछे पड़े हो? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दवाई नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब है कि केवल इतना दवाई 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 लेना, सब इसके पीछे ही पड़ा रहना। मतलब शारीरिक देहात्म बुद्धि जो है बहुत गहरा में नहीं होना चाहिए। जितना शरीर को ठीक करने के लिए आवश्यक है उतना करो, लेकिन 24 घंटे शरीर का सोचते रहना ये है वो है ये है, वो है, उतना नहीं करना। इसलिए थोड़ा कठोर भाषा में कुलशेखर राजा बोलते हैं कि औषधि पृच्छसि मूढ दुर्मते। फिर आगे
निरामयम कृष्ण रसायनम
पिब, निरामयम मतलब
बिना
बिना कोई रोग के, बिना कोई रोग के। सर्वे संतु निरामयः, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे संतु निरामयः, सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें। निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, पिब मतलब पियो, कृष्ण रसायन पियो। तो हमारे लिए कौन सा सबसे अच्छा पेय है? ना तो हमको सोमरस चाहिए, ना तो हमको ये सुरा और यवसुरा चाहिए। हाँ, अमरस जरूर चाहिए लेकिन भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाने के बाद फिर वो हमारे लिए कृष्ण रसायन बन जाता है। हाँ, तो कृष्ण रसायन का क्या मतलब है? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद, ये सब कृष्ण रसायन है। रसायन क्या होता है? रसायन
औषध,
औषध एक औषध है, किसके लिए होता है?
शक्ति वाले,
शक्ति।
वैसे अलग अलग तरह के रसायन होते हैं, शक्ति वर्धक होते हैं, थोड़े रोग से रोग को कम करने के लिए होते हैं, थोड़े मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए होते हैं, ऐसे विविध प्रकार के, 4 प्रकार के ऐसे रसायन हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जो रसायन है कृष्ण रसायन, इससे हमें आध्यात्मिक पोषण प्राप्त होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से हम हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं केवल अनाज खा के हृष्ट पुष्ट होना इतना पर्याप्त नहीं है, हमको हरिनाम लेके आध्यात्मिक दृष्टि से भी हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से कैसे पृथ्वी माता से तरह तरह के वांछित वस्तुओं को उत्पन्न करा रहे हैं पृथ्वी महाराज और अन्य ब्रह्मांड के निवासी, इसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
महाराज, ये सेक्शन से पहले पृथ्वी माता अलग अलग कारण बताती है कि क्यों मैंने समृद्धि देना बंद कर दिया। मतलब उनके जो अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी ये चीज किया, तो अभी इसमें जो समृद्धि जो निकाल रहे हैं उसमें देव भी आ रहे और आगे जाके यक्ष राक्षस भी आ रहे जो भूमंडल में नहीं आते। तो भूमंडल में जो किसी ने कुछ गलत किया उसका परिणाम ऊपर स्वर्गलोक में और यक्षराज में कैसे पहुँचेंगे? वो लोगों को समृद्धि निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्योंकि पृथ्वी माता में इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य ये सबके लिए पर्याप्त है। और ये जो अन्य मंडल है ना, ये भी जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है, जैसे भूवर लोक, ये सब बादलों के पीछे आसमान के अंदर, और अन्य जो लोक हैं सुतल अतल, ये सब पृथ्वी के नीचे बिलस्वर्ग। तो पृथ्वी माता में इतना ऐश्वर्य है, ये सब आकर्षित हो रहे हैं।
इस प्रकार भगवान हमारा रक्षक और पालक है, और उनका प्रतिनिधित्व जब राजा करते हैं तो वो भी हमको रक्षण और पालन करते हैं, इसलिए हम उनको बहुत कृतज्ञ होते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी माता भी हमारा तो रक्षक और पालक है। तो मगर जब राजा प्रतिनिधित्व करते समय में, क्योंकि वो ये जगत में रहने के कारण वो डिफॉल्ट को भूल जाते हैं भगवान को, और अपने आप को भी वो रक्षक और पालक का मूड में चले जाते हैं। और वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है, जो सिद्धांत के अनुसार गलती नहीं देखना है मैनेजमेंट में, मतलब अभी गलती देखना ही पड़ता है राजा को, ये प्रजा ऐसा कर रहा है, ये प्रजा ऐसा नहीं कर रहा है, तो फिर उसका उसका जीवन में खाली वो गलती देखना ही उसका एक ये हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। मगर इस टाइप से देखेंगे शासन करना पड़ता है, मगर भक्तों को शासन नहीं करना है। तो ये दोनों जब राजा को आता है वो कैसा बैलेंस करता है हमारा, एक वैष्णव सिद्धांत को और साथ साथ में उसका जो रोल है।
राजा की भूमिका या राजा की सेवा केवल इतना नहीं है कि भूल ढूंढते रहो और दंड देते रहो। राजा बहुत कुछ करता है, राजा सबको सुरक्षा भी प्रदान करता है, राजा सबका भरण पोषण करता है, पालन करता है, तोका नाम पितरो उसमें, तोका नाम मतलब जो जिस प्रकार से बच्चों का देखभाल माता पिता करते हैं, वैसे राजा अपने प्रजा का देखभाल करता है। तो राजा का कर्तव्य है सबको सुरक्षित रखना, सबको हर दृष्टि से, शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि से संतुष्ट रखना, और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि में आज से सबको आगे बढ़ाना, ये राजा का कार्य होता है। और ये सब ऐसे करते तो कभी कभी कोई गलत काम करता है तो दंड देना पड़ता है। जिस प्रकार से घर में जो घर की घर का मुखिया होता है वो देखेगा सब कुछ, सब लोग खुश है कि नहीं, सबको भोजन मिल रहा है कि नहीं, सुखी है कि नहीं सब लोग, और फिर कोई गलती करता है तो कर लेता है, लेकिन गलती देखना सुलझाना ये उसके कर्तव्य का छोटा हिस्सा है। सकारात्मक चीजें बहुत और करनी होती है उसको। ऐसा नहीं कि घर की मुखिया केवल दिन भर गलती ढूंढता रहे और सबको घर में डांटता रहे, ऐसे तो घर कैसे सुखी होगा फिर, है ना।
मेरा ये था कि वो ऑलमोस्ट सभी भगवान का जो भी कार्य है वो राजा कर रहे हैं, और वो ईगो अहंकार उसको मैं कर रहा हूँ उससे वो कैसा बचता है हमारा
संपूर्ण। वो भक्ति करके ही बचेगा, भक्ति सुदृढ़ होगी, इसलिए तो सब राज ऋषि हुआ करते थे ना, केवल राजा नहीं, राजा होके ऋषि भी होना चाहिए। तो राजा होने की योग्यता क्या है, केवल चुनाव जीतना नहीं, चुनाव कैसे वैसे जीत के तो कैसे भी तो कुर्सी पे बैठ लिया, फिर अपना पैसा वसूली करो, फिर से जो खर्च किया है उसको वसूली करो, ऐसा नहीं होता है।
दो तीन तात्पर्य अनुवाद है जो श्लोक का, आखिर श्लोक से दो दिन पहले उसमें एक में कहे हैं कि बृहस्पति जी बछड़ा बने और जो ऋषियों हैं वो इंद्रियों को पात्र बने और फिर जो वैदिक शास्त्रों को दोहन किए थे, तो ऋषियों ने इंद्रियों को पात्र बनाना मतलब उसका कुछ इंटरनल मीनिंग है या
नहीं? मतलब उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया, सार जो है शास्त्रों का जितना भी ज्ञान है उसको, उसका निचोड़ है वो उन्होंने ग्रहण किया, ये इसका मतलब। और तत्पर में बताया भी होगा प्रभुपाद जी ने
14वां
समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहनी, उन्होंने शब्द मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दुह लिया। तो जो वैदिक ज्ञान है, साहित्य है, केवल पृथ्वी माता नहीं, देखो यहाँ बृहस्पति स्वर्ग के पुरोहित हैं, ऋषियों ने तार्किक विधि से बृहस्पति के माध्यम से मानव समाज के लाभ के लिए न केवल इस लोक में वरन समस्त ब्रह्मांडों में वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान को मानव समाज की आवश्यकता माना जाता है। यदि मानव समाज पृथ्वी से शरीर भरण के लिए अन्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर संतुष्ट हो जाए तो समाज पर्याप्त उन्नति नहीं कर सकता। मानवता के पास मन, कान तथा ध्वनि स्पंदन या स्पुरण के लिए समुचित भोजन होना चाहिए। जहाँ तक दिव्य स्पुरण का प्रश्न है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार हरे कृष्ण महामंत्र है। यदि कलयुग में इस वैदिक महामंत्र का नित्य श्रवण कीर्तन की भक्तिमय विधि से श्रवण तथा कीर्तन होता रहे तो समस्त समाज पवित्र हो जाए और मानवता भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से सुखी रहे। तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है मनुष्य समाज के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल शरीर का भरण पोषण करते रहें अन्न आदि के द्वारा। इसलिए ऋषियों ने बृहस्पति जो के देवताओं के गुरु हैं उनको एक बछड़े के रूप में परिवर्तित उनको किया और ये सब लिया इंद्रियों के द्वारा, सारे ज्ञान को स्वीकार, वैदिक ज्ञान को स्वीकार किया। तो आजकल इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? श्रवण कीर्तन, हमारे श्रवण इंद्रिया हैं और ये दर्शन इंद्रिया हैं, उन सब का प्रयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए, ये तात्पर्य हमारे लिए।
ये थोड़ा इधर के लिए प्रैक्टिकल प्रश्न है, मतलब हम लोग इधर देखते हैं कि बाहर का सिटी का टेम्पल में इधर में हम लोग कीर्तन भजन श्रवण प्लस उसके लिए मैनेजमेंट, इधर अभी हमारा गौशाला में सोचते रहेंगे तो उसका पुस्तक पढ़ते रहेंगे, हनी रखना है, मतलब समाज को सृष्टि करने के लिए भी कुछ पुस्तक को हमको पढ़ते जाते समय में बहुत सारे डिटेल्स में जाते समय में मन उसको लगता है, कभी सुख दुख मान अपमान होते रहते हैं, दोनों बीच में हमारा कभी भी ये फाइट होते हैं, चेतना कभी इससे में पूरा डिटेल में चले जाता है, नहीं तो भक्ति किए तो इससे में चले, ये सब कुछ नेग्लेक्ट कर देते, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
दुनिया में आसान क्या है बोलो? प्रसाद खाना भी आसान नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है, जीना भी आसान नहीं, कितना संघर्ष होता है। हम कुछ करने जाए तो अरे पेट दर्द में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, ये करो वो करो, है कि नहीं? कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो बात ये नहीं है कि कोई चीज़ आसान है या नहीं, महत्वपूर्ण बात है कि ये उचित है कि नहीं, ये हमारे भलाई के लिए है कि नहीं। यदि हमारे भलाई के लिए है, यदि ये उचित है, सही है, तो उसको करना चाहिए, भले वो आसान हो या न हो। तो ये संतुलन हमारे जीवन में लाना, ये उचित है, आवश्यक है, हमारे भलाई के लिए है, इसलिए करना चाहिए, भले आसान हो या ना हो। और दो हरे कृष्णा। तो फल फूल का चल रहा है ना आंदोलन, और जल का, जल फल फूल, ये वाटर एप्पल में देख के मन खुश हो जाता है कि नहीं। कितना सुंदर रंग भी है, देखो दिखने में भी कितना अच्छा लगता है, भगवान का चमत्कार स्वाद अमृत जैसा, वो भी खिचड़ी के साथ। प्रसाद बनाए किसने? खिचड़ी
उद्धव जी।
वो भी उद्धव हरि प्रभु ने बनाया हुआ। तो याद है ना जनानंदन प्रभु, फल ही फल, भरपूर भरपूर। अभी हर लोग जो खाते हैं तो बीज बहुत सारे होते हैं, उसका क्या करते हो?
कुछ पिछली बार जो थे बीज निकाल के रखे हैं, काट के उसका नर्सरी करके अगले साल लगाएंगे।
कितने लगाओगे? खूब लगाओ, भरपूर। और फिर इधर उधर बेलगाम में भी भेजो आश्रम के लिए, वो लोग, उनको भी थोड़ा आनंद आने दो, गोकुल धाम का। वो खाया, अच्छा लगा? आज आनंद प्रभु का जन्मदिन है, उनको अभी भी पता चला क्लास के थे। क्योंकि आज अखबार पढ़ा नहीं हमने, तो उनको पता नहीं था। इसलिए खास गोकुल धाम आप सबके बीच में है जन्मदिन मनाने के लिए। तो सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, पानी की सेवा हो रही है ठीक से? समस्त वैष्णव प्रभु सुनर दो हरे प्रभु, पानी का हो रहा है काम, चल रहा है? तालाब और डैम का कैसे हो रहा है?
कल से चल रहा है,
कल से
चालू
चालू हो जाएगा।
उसके